मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 5 जून 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं अपने सभी आप प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। साथियों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो साथियों के नाम हैं विनय कुमार जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और दूसरे साथी हैं अरविंद कुमार वर्मा जो सांडिल्ला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। तो विनय, अरविंद, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, साथी, आप दोनों के माध्यम से अपने सभी उन स्टूडेंट्स का आज मैं एक बार फिर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की जो अक्टूबर में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और आज मेरे इस फिर से स्वागत करने के पीछे कारण यह है दोस्तों कि लगभग ये बैच अब पूरा होने जा रहा है, तो अब करीब करीब एक कंप्लीट सा डाटा हमारे सामने है। और लगभग ये सारे के सारे साथी जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराए हैं एक ऐसी नाव की में बैठकर यात्रा पर निकलेंगे जिस नाव की यात्रा का अंत कहीं न कहीं न केवल सर्विस पाने की सफलता में ही होना होगा बल्कि जीवन की सफलता में भी होगा। मित्रों, आज भी मैं आप सभी का अपने प्रिय श्रोताओं का जो स्वागत कर रहा हूं वो कर रहा हूं अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट से। दोस्तों, इसी स्वागत के साथ ही एक सूचना ही मैं कहूं, अगर सूचना सी है, तो मेरे पास राहुल राय के जो भांजे हैं जो सिर्फ 11 साल का लड़का है और अपने मामा की देखरेख कर रहा है, उसका मेल आया है। और उस मेल में उसने बताया है कि जो उसके मामा हैं राहुल राय के बारे में आप जानते हैं, मैंने पहले भी चर्चा की थी, वो सेकेंड बैच के हमारे स्टूडेंट रहे हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं और अमेरिका की जो MIT यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की नंबर वन यूनिवर्सिटी मानी जाती है वहाँ वो गए हुए थे, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मेल जो आया है उससे मुझे मालूम हुआ है कि उनके पहले थोड़ा सा लीवर में कुछ इन्फेक्शन सा हुआ था और जिसके कारण वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा था, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो किडनी पर भी पड़ा और फिलहाल वो अमेरिका में न रह करके उन्हें कनाडा शिफ्ट किया गया है और कनाडा में उनका इलाज चल रहा है। तो मित्रों, मुझे जो आप लोग एकेडमी के मेरे जितने भी प्रिय श्रोता हैं, AFE के प्रिय श्रोता हैं, उनकी तरफ से बहुत से मेल आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए और ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना से संबंधित। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आप सभी के माध्यम से और आप सभी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं एकेडमी की अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर कि ईश्वर उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी पूरी तरह ठीक करे, वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ होकर के हम लोगों की जो मेन स्ट्रीम है उसमें पूरी सक्रियता से शामिल हों। और राहुल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि पूरा जो AFE की जो टीम है और जो तुम्हारे जितने भी परिचित हैं संबंधित हैं वो सब तुम्हारे साथ हैं, सब बहुत ही पवित्र मन और उदार चेतना के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन प्रार्थनाओं का अपना असर होगा, ये प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचेंगी, तुम तक भी पहुंचेंगी और तुमको बहुत ही जल्दी स्वस्थ करने में, हील करने में मदद करेंगी। तुम्हारे लिए मेरा ये संदेश है कि तुमने एकेडमी की क्लासेज अटेंड की हैं बहुत लंबे समय से, तुम afeis.com को सुन रहे हो, शायद तुमने मेरे उस पूरे के पूरे सीरीज को सुना होगा जिसमें मैंने भावना और विचारों के द्वंद्व की बात कही थी और उसमें मैंने बताया था कि ऐसे मौकों पर, खासकर जिससे अभी तुम गुजर रहे हो, बहुत जरूरी है कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो और अपने विल पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, उस सीमा तक बढ़ा लो कि कोई भी बाहरी इस तरह का इन्फेक्शन या आंतरिक ही इस तरह का इन्फेक्शन तुम्हारे शरीर और दिमाग पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। जो तुम्हारे विल पावर होगी उसकी अभी सच पूछो तो डॉक्टर्स को भी सबसे अधिक जरूरत है, और यदि डॉक्टर्स को मेडिसिन्स को जो भी इलाज की पूरी प्रक्रिया चल रही है उसे अगर तुम्हारे विल पावर का सहारा मिल सका तो डेफिनेटली निश्चित जानो कि तुम बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों की मेन स्ट्रीम में शामिल होगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दुआ तुम्हारे साथ हैं, दवाएं चल रही हैं, बस तुम भी अपनी अपने साथ पूरी तरह से रहो, अपने को जरा भी रत्ती भर भी नॉट इवन जी 0.0001% भी कमजोर होने दो। राहुल हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे और जल्दी से जल्दी तुम्हारे पूरी तरह स्वस्थ होने की शुभ सूचना का इंतजार कर रहे हैं। और मित्रों मैं फिर से अपने पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पत्नी बेटी और बहू की तरफ से, अपने पूरे श्रोताओं से एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने डेली के समय का कम से कम 2 मिनट ईश्वर से इस प्रार्थना में लगाएं कि हम सबके बहुत प्यारे साथी राहुल राय पूरी तरह से जल्दी स्वस्थ हो सके। मित्रों अब मैं आता हूं आज के जो मोटिवेशन का हमारा पार्ट है उस छोटे से चरण पर। आपको मालूम है कि फिलहाल मैं अमेरिका में हूं, मेरी पत्नी अमेरिका में है और हम लोग अमेरिका को देखने समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट कि ये सारी कोशिश एक कल्चर एक सांस्कृतिक स्तर पर तो हो ही रही है, लेकिन चूंकि मुझे AFEIS.com में भी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करने हैं, आप लोगों की 15 दिन की क्लासेस भी लेनी है, तो इस बार जो मुझे अमेरिका को देखने का मौका मिल रहा है उसमें मेरा नजरिया थोड़ा सा व्यापक हो गया है और उसमें मैं खासकर जो अमेरिका की ताकत है, चाहे वो उसकी आर्थिक ताकत हो, चाहे उसकी चरित्रगत विशेषताएं हो, उन सब को भी बहुत गहराई से देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं अपने इस समझ को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मित्रों इसी तरह की एक घटना है, 2 दिन पहले हम लोग किसी के अपने मित्र के यहाँ डिनर पर बातचीत कर रहे थे, वो भी भारत के ही हैं, कुछ साल पहले ही, लगभग 25-30 साल पहले भारत से अमेरिका आ गए हैं। तो डाइनिंग टेबल पर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ऐसे ही हम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने उनसे जानना चाहा कि आफ्टर ऑल जो अमेरिका आज इतना शक्तिशाली राष्ट्र बना है उसके पीछे कारण क्या है और भारत आपको क्यों इतना पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। ये प्रश्न मेरा उनसे पूछने का एक खास कारण था और कारण ये था कि वो पिछले 30 साल से पूरे के पूरे अमेरिका के विकास को देख रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि अमेरिका में आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बहुत अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। पूरे अमेरिका में आप राजमार्गों के द्वारा, जिसे आप हाईवेज कहते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं और उन राजमार्गों पर जो आपकी कार की जो स्पीड होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की नहीं होती है। सर्राटे से कार गुजरती है, पता भी नहीं लगता है कि कौन सी कार कब कहां से आई और फिर कहां नदारत हो गई, फिर जैसे कि कोई बहुत ही रैकेट आया हो और चला गया हो। साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, पूरी मरम्मत वाली सड़कें, ऐसा नहीं कि आपको जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए हैं और आपको अपनी गाड़ी की स्पीड रोकनी है, पूरी तरह से सुरक्षित, बशर्ते कि आप चलाने में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और उन राजमार्गों के दाहिने साइड से होकर कट कर गुजरने वाली एग्जिट होने के लिए, अगर साइड में कोई रास्ता गुजरना है तो वो एग्जिट के लिए सड़कें होती हैं। ये सब के सब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का कमाल है और हम भी तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही लगभग आजाद हुए हैं। तो आखिर क्या कारण है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इतने पीछे रह गए? उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण बताए मित्रों, और उनके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो दवा बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, वो मर्क कंपनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शायद दुनिया के का कोई शायद ही कोई ऐसा देश रहा होगा जहां वे न गए हों और उन्होंने अपने कंपनी का प्रतिनिधित्व न किया हो। स्वाभाविक है कि एक तरफ वो आर्थिक जगत में है कंपनी में काम करने के कारण और दूसरा पूरे के पूरे विश्व का सिनेरियो उनके पास है, इसीलिए उनसे बातचीत करना मेरे लिए एक विशेष मायने रखता है। और उन्होंने जो बात बताई वो 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये शेयरिंग न केवल हमारे अपने एक मोटिवेशन का ही हिस्सा है, हमारी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, बल्कि हमारे नॉलेज का भी हिस्सा है, हमारी एक एनालिसिस पावर को बढ़ाने का भी हिस्सा है कि किस तरह से हम पूरे के पूरे वर्ल्ड सिनेरियो के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को देख और समझ सकते हैं और उसके बारे में अपने निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। उन्होंने 3 पॉइंट्स जो बताए थे जो अमेरिका में दूसरे देशों की तुलना से अलग हैं, एक उन्होंने बताया कि भारत में या जो दूसरे और डेवलपिंग कंट्री में हैं उनमें जो वर्किंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। एबिलिटी की बात उन्होंने नहीं की, एबिलिटी बिल्कुल अलग है, भारत के पास एबिलिटी कम नहीं है, योग्यता में कम नहीं है। और आप अखबारों में भी बीच बीच में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो भारत के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से टॉपर बनते हैं, इनाम हासिल करते हैं, बहुत अच्छे पदों पर पहुँच रहे हैं। तो एबिलिटी की कमी तो नहीं है, जो कमी है वो कैपेसिटी की है। और कैपेसिटी को उन्होंने फिर अलग तरीके से डिफाइन भी किया था। कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि शरीर शारीरिक क्षमता या ऊर्जा, कैपेसिटी का मतलब है विल पावर या इच्छा। उनका कहना था कि जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि यहाँ के लोग कैपेसिटी के मामले में वर्ल्ड में सबसे अधिक टॉप पर हैं। अगर उनको कोई काम दे दिया गया और 8 घंटे उनको काम करना है तो 8 घंटे काम करेंगे और पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। जबकि भारत का जो पूरे के पूरे इंडेक्स में जो रिकॉर्ड आता है वो लगभग 3 घंटे का आता है। अब सवाल ये उठता है कि कहां 3 घंटे में और कहां 8 घंटे में जो आप आउटपुट देंगे उसी का अंतर ही शायद अमेरिका और भारत के डेवलपमेंट का अंतर हो सकता है, अगर हम इसका बहुत सरलीकरण करके इसे देखें तो एक तो एक वर्क कल्चर की बात हो गई मित्रों। दूसरी जो उन्होंने बात कही कि यहां जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत प्रोमिनेंट है और सर्विस सेक्टर में वो सारी चीजें फिर आ जाती हैं। सर्विस सेक्टर में ही जो सबसे बड़ी ताकत आज अमेरिका की, जो मैं खुद भी देख रहा हूं, हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं, वो टूरिज्म का है। और टूरिज्म यहां इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि लोग यहां आना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को जो आने वाले हैं अपने को काफी को सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा उनको अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था से भी नहीं गुजरने पड़ते। तो मित्रों ये छोटी सी दो चीजें हैं, अगर हम इसको सर्विस सेक्टर को भी, चूंकि अगर हम इकोनॉमिक टर्म में उसको डिफाइन करें तो वो टूरिज्म का हिस्सा हो जाता है, टूरिज्म सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगर आप इसको अप्लाई करके देखें भारत के ऊपर दोस्तों, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के पास ये सारी चीजें हैं, बस केवल जो कैपेसिटी है वो कम है? क्योंकि वो बता रहे थे कि किस तरह से जब वो किसी कंपनी को अपना काम सौंपते हैं या उनके साथ जो एमओयू साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। और उस पैरामीटर्स में उन्होंने कैपेसिटी की बात कही कि भारत में जब वो किसी कंपनी को अपना काम देते हैं तो ये कैपेसिटी वाले पॉइंट को सबसे ज्यादा देखते हैं, जो बहुत ही पुअर बैठता है, जबकि दूसरी जगह पर यह उससे बहुत ज्यादा हाई है। अदरवाइज आप सोच करके देखिए कि जो टूरिज्म का हिस्सा है वो भारत को कितना बड़ा आर्थिक संबल प्रदान कर सकता है। क्योंकि आप अमेरिका में आएंगे तो यहां अगर टूरिस्ट बन करके आएंगे तो यहां की जो महंगाई है वो आपका दिमाग खराब कर देगी, वो सच में दिमाग खराब कर देगी। क्योंकि हम तो यहां जब भी कोई आप डॉलर में ही वो मांगता है पैसा, और डॉलर में वो बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब उसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 63 टाइम्स हो जाता है। जैसे मैं परसों के कल की बात बताएं कि जब हम लोगों को घर से और एयरपोर्ट के लिए आना था तो उसकी दूरी 20 से 21 किलोमीटर दूरी थी, और आप ताज्जुब करेंगे कि उसके लिए उन्होंने जो कार का किराया भी जो मांगा, कार जो हम लोगों ने ली थी वो $70 की थी। अब लेकिन आप जब $70 को आप 63-64 में कन्वर्ट करेंगे तो पता लगा कि वो 4,000 रुपए के करीब बैठ जाती है। अब ये 4,000 रुपए आप केवल 20 किलोमीटर के लिए दे रहे हैं और यू कांट हेल्प, आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको देना है। और सोच करके देखें कि यही अमेरिकन जब 20 किलोमीटर का सफर दिल्ली में आकर के तय करेगा तो 20 किलोमीटर के सफर के लिए उसको 600 रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए प्रति किलोमीटर मुश्किल से। और यहां एक इंडियन जो आ रहा है उसके लिए वो 4,500 रुपए दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कल्पना करके देखिए कि भारत में कितना पोटेंशियल है टूरिज्म का। नो डाउट कि हमारे पास स्पॉट तो है ही है, तरह तरह के नेचर से लेकर के और सांस्कृतिक तक के स्पॉट हैं, ऐतिहासिक स्पॉट हैं, सारी चीजें हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इमोशंस, क्योंकि अभी भी हमारे यहां चाहे जितने भी आधुनिकता आ गई हो लेकिन जो अतिथि देव भव का जो कॉन्सेप्ट है आज भी भारत में है। और आप देखते हैं कि गुजरात स्टेट जो अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जिस गीत की लाइन का सबसे ज्यादा उन्होंने लोकगीत की पंक्ति का सहारा लिया है वही है पधारो मारो देश। ये भारतीय एक तरह से दर्शन और इमोशंस और जीवन पद्धति है उसको व्यक्त करता है। तो जो देश अतिथि को अपने यहां एक तरह से देवता के तुल्य मानता हो, सर्विसेज इतनी सस्ती हो और उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हो, वो कितना कमाल कर सकता है मित्रों। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो बार बार हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के भारत के टूरिज्म की बात करते हैं, बहुत सही लाइन पर बात करते हैं। मित्रों, यहाँ सर्विसेज बहुत महंगी हैं। आपको 5-स्टार होटल में रुका दिया जाएगा, लेकिन आपके कमरे में कोई एक कप चाय पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने कमरे में एक कप चाय मंगाएंगे तो पता लगा कि वही चाय जो आप जाकर के वहां होटल में पीते 300 रुपये कप की पड़ती, आपके कमरे में पहुंच करके वो 600 रुपये कप की हो जाएगी। फिर आपको जो मीठी चाय है अच्छी खासी जो है ना स्वादहीन या खारी लगने लगेगी। इतने ज़्यादा यहाँ लेबर महंगे हैं, तो कल्पना करके देखिए मित्रों की कितना पोटेंशियल है। हमको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जो अगर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में जाना है तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, अपने रिसोर्सेज को समझना होगा। और मैं समझता हूं कि जब हम अपने रिसोर्सेज को समझने की बात करते हैं तो उस रिसोर्सेज में हमारी अपनी कैपेसिटी भी शामिल है, क्योंकि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर के कोई भी दूसरा रिसोर्स नहीं होता। फ्रेंड्स, आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने सच में कभी अपनी कैपेसिटी के बारे में सोचा है? क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के मेल आते हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है और मैं नौकरी पर जाता हूं और इतने बजे लौटता हूं और फलाना होता है और फलाना होता है, बताइए मैं क्या करूं। अब उनको मेरा जवाब है कि आप कुछ मत कीजिए, केवल आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, सारी चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। मित्रों, कहने में ये बात बड़ी छोटी सी लगती है और बेवकूफी वाली भी कभी कभी लगती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। लेकिन जब आप दुनिया को देखने, जानने और समझने के लिए निकलते हैं और उनका बहुत ही तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हैं, तब आपको पता लगता है कि नहीं, यही चीजें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो मित्रों, चाहे देश की बात हो या व्यक्ति की बात हो, आज मेरे इस मोटिवेशन वाले चैप्टर का जो पार्ट है, जो मैसेज है, जो महत्वपूर्ण, जो सार है, जो केंद्र है, वो यही कि हम सबको अपनी अपनी क्षमताओं के बारे में सोचना चाहिए और अपनी क्षमताओं को अनंत मानते हुए उनके विस्तार के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं बहुत बड़ी बड़ी कोशिश की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम छोटी मोटी कोशिश की शुरुआत तो हमें कर ही देनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के मोटिवेशन वाले पार्ट पर इतना ही। अब मैं आता हूं कल के IR न्यूज़ के बारे में। मित्रों, जैसा कि मैंने परसों भी बात की थी, कल के भी AIR न्यूज़ की काफ़ी खबरें, जो पिछले जो न्यूज़ चली आ रही हैं उनका एक्सटेंशन था, जिसमें दो खबरें तो उसी की एक्सटेंशन है जिनके बारे में मैं विशेष रूप से अब चर्चा नहीं करूंगा, जिसमें एक मैगी नूडल्स को लेकर के जो बात चल रही है और दूसरा मानसून को लेकर के बात चल रही है। लेकिन इसके एक थोड़े से एक जो इमेज होती है, इंप्रेशन होता है जो न्यूज आइटम का, जिसको मैं छवि कहता हूं या शेड्स कहता हूं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात आपसे करना चाहूंगा। जैसे आप देखें कि मानसून की बात हुई, तो मानसून के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस किया है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। अब आपको लग सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का मानसून से क्या लेना देना है मित्रों, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो देश की सबसे बड़ी बात होती है और मानसून का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर होता है। और हमारे वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को ही देखते समझते हैं, उन्हीं को सुधारते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके वही सबसे अधिक चिंतित होंगे। तो इस पर उन्होंने बहुत अच्छा एश्योरेंस दिया है और एश्योरेंस यही है कि हमारे पास खाद्यान्न का एक तो बहुत बड़ा भंडार है। ये मित्रों 1965-66 के अकाल के बाद से ही भारत ने खाद्यान्न का भंडार बनाना शुरू किया था और अब भारत को 1-2 साल के अकाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल सही है, हमारे पास बहुत अधिक भंडार है। दूसरी बात देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और पूरी तरह से हमें इंश्योर भी किया है, जो सही भी है, कि जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, जो सिंचित भूमि जहां की नहीं है, जो ज्यादातर मानसून पर निर्भर है, वहां अनाज के उत्पादन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पूरा देश किसी बड़े सूखे की चपेट में आने वाला है। अदरवाइज होता यह है कि अर्थव्यवस्था में एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है, लगता है कि अरे बाप रे, अब तो सब इतना घोर अकाल पड़ने वाला है कि दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, पानी पानी की बूंदों के लिए तरस जाएंगे, और उस पैनिक ज्यादा नुकसान करता है। रियल में चीजें वैसी होती नहीं है, लेकिन एक पैनिकपन जो आ जाता है, पागलपन सा सवार हो जाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बार बार कभी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आएगा, कभी खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री का स्टेटमेंट आएगा, कभी हमारे चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है, कभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है, ताकि देश में एक पैनिक की स्थिति क्रिएट ना हो पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 दिन से मुझे शेयर मार्केट में एक तरह के वो पैनिक की स्थिति ही दिखाई दे रही है, और वो इसीलिए लग रहा है उनको कि जैसे मानसून आ गया तो हमारे की पूरी जो अर्थव्यवस्था है अब चौपट होने वाली है। तो उसका एक्सटेंशन था मित्रों, मैगी नूडल्स के बारे में भी खबर थी, उसके बारे में मैं केवल आपसे यह कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता के मामले में मिलावट चीजों के मामले में जो हमारे कानून के प्रोविजन हैं, प्लीज उसमें से दो तीन प्रोविजंस को आप अलग से नोट कर लीजिए। प्रोविजंस के जो अनुच्छेद और धाराएं और जो चीजें भी होती हैं, जो भी आपको रेफरेंस के रूप में, उस रेफरेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए और याद कर लीजिए और बीच बीच में दोहराते रहिए, क्योंकि ये इससे होगा ये कि जो आप लिखेंगे वो अधिक तथ्यपूर्ण हो जाएगा और वही आपका लिखना ये शो करेगा कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में अधिक सतर्क स्टूडेंट हैं और अधिक लॉजिक तरीके से चीजों को सोचते हैं। तो ये तो उसी के एक्सटेंशन थे फ्रेंड्स। जो अब मैं इंपॉर्टेंट खबरें बता रहा हूं, जो कल की न्यूज में जो एक नई है और इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस की दृष्टि से, वो दो खबरें हैं मित्रों। पहली खबर तो ये है कि जो गंगा नमामि योजना है, नमामि गंगे योजना, गंगा की सफाई का अभियान, तो ये एक बहुत एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया है मिनिस्टर का, उमा भारती जी का, कि अब उस पर जो भी खर्च होगा उसका 100% जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए वैसे ये खबर आपको सामान्य रूप में एक छोटी खबर लग सकती है, राइट, कि ठीक है उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हो क्या ये रहा है खासकर ऐसी योजनाओं में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ शेयर करना पड़ता है, शेयरिंग होती है। जैसे आप देखिए मिड डे मील, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ देना पड़ता है। पहले जो जवाहरलाल नेहरू जो शहरी नवीनीकरण योजना थी, या अभी जो मनरेगा योजना चल रही है, अब उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया है शहरी नवीनीकरण योजना का, तो उसमें भी स्टेट से कहा जाता है कि आप 25% 40% 50% सब स्टेट के अपने लेवल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से फार्मूले बने हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए कि 50% देगी तो 50% आप दीजिए। राज्यों की सभी की स्थिति यह नहीं होती कि वो 50% इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाओं के लिए दे सकें, क्योंकि उनके पास एक साधन सीमित होते हैं, आय के साधन भी सीमित हैं, आय के दूसरी तीसरी चीज है कि उनकी अपनी योजनाएं भी चलती रहती हैं, उसके लिए भी उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वो योजनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। और आप देख रहे हैं कि जो नमामि गंगे योजना, गंगा की सफाई अभियान का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। सुप्रीम कोर्ट को आप समय समय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट भी मांगता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब जरूरी सरकार के लिए कह लीजिए कि एक संवैधानिक या वैधानिक मजबूरी ही कह लीजिए अगर कह सकते हैं, तो हो गए कि वो गंगा सफाई को, गंगा की सफाई करके दिखाए। अदरवाइज तो वो 85-86 से गंगा सफाई अभियान चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 4000 करोड़, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन गंगा वैसी की वैसी है। तो ऐसी स्थिति में अगर सच में उसको कार्य रूप में परिणित करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि वो सफाई का काम कराया जाए, उसके लिए पैसे को आड़े ना आने दिया जाए। और पैसे को आड़े ना आने दिया जाए, इसके लिए सबसे पहला कदम मुझे यही लगता है कि स्टेट से कह दिया जाए कि भैया ठीक है आप पैसा मत दीजिए, कोई बात नहीं हम पूरा पैसा लगाते हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक तो पैसा देना उनके लिए वास्तव में संभव नहीं हो पाता है, दूसरा यह कि वो फिर टालमटोल करते रहते हैं इधर उधर की चीजों में। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनके देखने का अपना नजरिया है, वहां अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने ढंग से चीजों को देखेगी, उसका अपना एजेंडा अलग है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है एक संघात्मक सरकार की अगर हम बात लेकर के चले। लेकिन केंद्र अगर उन पर दबाव डाल देती है तो मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी में आपको मालूम है कि काम अच्छे तरीके से होते नहीं है, और सच पूछे तो ये एक तरह से संघात्मक चरित्र के विपरीत भी है। तो इस रूप में अब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर पैसा खर्च करेगी, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इसे हम गंगा सफाई अभियान या नदी सफाई अभियान या पूरे के पूरे प्रदूषण के बारे में हमारा देश जो करने जा रहा है, जो सोच रहा है, उसके तहत एक महत्वपूर्ण कंटेंट मान सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर थी फ्रेंड्स, वो थी खासकर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, विद्युत को लेकर के। देखिए जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि इसके लिए मैंने एक ग्रीन एनर्जी, ग्रीन, यस, ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ग्रीन एनर्जी पर मैंने एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस तैयार किया। हालांकि उसका नाम बिल्कुल ग्रीन एनर्जी नहीं है, वो ग्रीन इंडिया नाम से एक टाइटल से एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मैं तैयार करके आया था और वो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट के लिए, या तो उन्होंने वो उसे सुन लिया होगा या उनके पास आने वाला होगा। उस ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट में मैंने ग्रीन एनर्जी पर अलग से बात की थी और मुझे लगता है कि ये जो ग्रीन एनर्जी है या ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट है, ये देश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट हमारा विद्युत उत्पादन है, नो डाउट, क्यों, मेक इन इंडिया का तो है ही है कि अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हमारा देश कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। उसमें उन्होंने, अगर जो जिन स्टूडेंट्स ने ये स्पेशल ऑडियो सुना होगा, उसमें मैंने जो सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसमें मैंने एलईडी बल्ब के बारे में बात की थी कि इस पर सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि इसमें विद्युत का जो विद्युत का की जो खर्च होती है वो बहुत कम है। इस पर इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट, हमारे जो विद्युत मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने दिया कि एलईडी का जो रेट था वो इस सरकार के आने पर उसमें 74% दाम कम कर दिए गए हैं, मतलब 74% उसके दाम घटा दिए हैं। देखिए, वैसे मैं आपको बताएं तो कि जो इलेक्ट्रिक कार इंडिया में भी आ चुकी हैं, लॉन्च हो गई हैं और अमेरिका में भी है, जब मेरी यहां बात हुई तो वो इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन यहां भी वो इसलिए पॉपुलर नहीं हो पा रही क्योंकि वो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। भारत में भी इसलिए पॉपुलर नहीं हो पा रही क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा है। तो आप एक तरफ बिजली बचाने के बारे में भी सोच रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रदूषण कम करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो भैया इन कारों पर सब्सिडी दे दीजिए ताकि लोग खरीद सके। लोग तो खरीद लेंगे क्योंकि वो कार सस्ती भी पड़ती हैं, मतलब खासकर जो फ्यूल कंजम्पशन की दृष्टि से वो कार सस्ती पड़ेंगी। मान लीजिए कि पेट्रोल की कार मुझे 5 रुपए पर किलोमीटर का पेट्रोलियम खर्च करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक कार में वो घट करके 1 रुपए ही हो जाएगी, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जो मुझे वो कार खरीदनी पड़ेगी वो बहुत महंगी है। तो एलईडी के साथ भी यही हो रहा था। तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि एलईडी की जो रेट हमने 74% कम किए हैं, ये एक तथ्य है, कंटेंट है, राइट। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही वो ये है कि इस साल भी हालांकि बिजली की कमी है, जो डिमांड और सप्लाई में कमी है, लेकिन वो अब तक की सबसे कम है, वो है 3.6%। ये आप आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि अभी भी हमारे देश में जो डिमांड और सप्लाई में जो बिजली का जो एक गैप बना हुआ है, दैट इज 3.6%। हालांकि मित्रों, सुनने में आपको 3.6% बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इसके इंपैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि विद्युत अगर आप कारखानों में नहीं पहुंचाएंगे तो सोच करके देखिए कि उनके कितने घंटे काम रुक जाएगा, तो वो औद्योगिक उत्पादन वो कर ही नहीं सकते हैं। काम रुकेगा तो उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। अगर आप खेती के लिए बिजली नहीं दे पाते हैं तो अनाज कैसे कैसे कहां कहां कितनी बिजली चाहिए, थोड़ी सोच करके देंगे कब चाहिए, कि वहां कब सिंचाई की जरूरत है, कि कब खेत सूख रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये 3.6% उस तरह से बहुत कम नहीं है जो सुनने में लगता है, इसका इंपैक्ट बहुत गंभीर होंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि अभी तक का सबसे कम है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक साल के अंदर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन बढ़ाया है वो 22,566 मेगावाट, यानी कि लगभग 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ है। यह भी एक अच्छा है कि 22,000 बिजली मेगावाट बिजली एक साल में भारत ने उत्पादित किया। और आपको मालूम है कि आने वाले 5 सालों में भारत ने खासकर ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत जो उत्पादन का लक्ष्य रखा है, आपको मालूम है कि 2.25 लाख मेगावाट, जो बहुत बड़ा है, जिसमें 1 लाख मेगावाट तो केवल सोलर एनर्जी की बात है। तो ये दोस्तों, ये मैं खासकर ये आंकड़े भी आपको इसलिए दोहरा करके बता रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए आप, और एनालिसिस में आप इनका उपयोग अच्छी तरीके से कर सके, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, और वही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सिविल सर्वेंट बनाएगी। वो चीज आपके पास होनी चाहिए। हां, कैसे हो सकती है, उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें मैं अपने रास्ते की बात कर रहा हूं। आपके पास कुछ और भी दूसरे रास्ते हो सकते हैं, तो उस रास्ते के साथ आप इस रास्ते को मिला लीजिए। और भी बहुत से रास्ते हो सकते हैं, तो कई सारे रास्ते को मिला लीजिए, लेकिन जहां पहुंचना है वो लगभग यही स्थिति होनी चाहिए आपकी, कि कंटेंट बहुत सॉलिड स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में है और उनका इस्तेमाल करना आप इतने अच्छे तरीके से आते हैं कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उस कंटेंट को सामने रख देते हैं। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी जो खबरें हैं, देखिए मणिपुर में जो पहली जो हेडलाइन ही थी कि सेना पर उग्रवादियों ने आक्रमण किया और अटैक किया, आक्रमण तो क्या कहेंगे, घात लगाकर हमला किया बम विस्फोट से, और उसमें 20 जवान मारे गए। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी की जो स्थितियां हो रही हैं उससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में दो चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं, तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की उग्रवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। हमारे अंदर अगर आप बस छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश वगैरह में देखें तो वो नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है, और जम्मू कश्मीर में देखें तो उधर एक अलग तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं अलग अलग जो तीन दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा थ्रेट दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि इंटरनल सिक्योरिटी आपके सिविल सर्विस के सिनॉप्सिस में भी है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो उस रूप में एक घटना है, वैसे बहुत बड़ी घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, लेकिन सिविल सर्विस की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि उसका एक पार्ट है जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के तहत प्रोवाइड करता है। मित्रों, फिर एक बात छोटी सी यही थी कि जीएसटी के लिए राज्यों ने जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये डिमांड की है कि उन्हें 5 साल के लिए पूरा मुआवजा दिया जाए। और मालूम है कि अभी जो गवर्नमेंट ने फार्मूला दिया है उसमें यही कहा है कि आप लोगों को जीएसटी के लागू होने से जो टोटल रेवेन्यू में जो नुकसान होगा, पहले 3 साल तक गवर्नमेंट उसकी 100% तक भरपाई करेगी, चौथे साल 75% तक, 50% तक, इस तरह का उसने एक फार्मूला दिया हुआ है। तो अब लेकिन राज्यों की मांग है कि वो 100% भरपाई 5 साल तक करे। और आपको ये भी मालूम है कि कोशिश सरकार की यही है कि अगले साल जो बजट के बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस लागू हो जाए। तो मित्रों, आकाशवाणी के से जो समाचार थे उनसे लगभग यही महत्वपूर्ण खबरें हमारे सामने अभी तक आ पाई हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होंगी, वो आप लोग देख लेंगे। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को यह स्मरण दिलाते हुए इजाजत चाहूँगा कि आप सब मिलकर अपने अपने स्तर पर राहुल राय की जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वस्थ होने के लिए पूरे खुले पवित्र शांत और स्थिर मन से ईश्वर से प्रार्थना करें। तो मित्रों, अब मैं इजाजत चाहूँगा, नमस्कार।